धवला पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 7। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्चायाणं, नमो लोए सौवसाऊणं, त्रिभुवन शिरसे हरये भवभय गभ्भादुनिगदेपणं, सिद्धे जीवठाण मलिन गुणचूलियम ओच्छम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें प्रथम खंड जीवस्थान नाम का अपना चल रहा है। अभी ये छठी पुस्तक पर पहला खंड ही चल रहा है जीवस्थान नाम का, और उसकी ये चूलिका है। प्रथम खंड का ये अंतिम पुस्तक है, और ये छठी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 74 पर हम आ गए। 74 नाम कर्म के जो अलग अलग प्रकृतियां हैं उसका क्या कार्य है उसकी बात हम देख रहे थे। पहले हमने 42 प्रकृतियां बताई, उसको पिंड रूप से बताया। उसमें कुछ ग्रुप वाली भी प्रकृतियां है, कुछ सिंगल भी है। उसमें से वो ग्रुप वाली प्रकृतियों की यहाँ बात विशेषता बता रहे हैं। तो हमने अभी तक गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, अंगोपांग, सहनन, अभी वर्ण गंध रस स्पर्श देखेंगे, सहनन तक देखा था हमने। अभी यहाँ 74 पृष्ठ पर जो नया सूत्र है 37 नंबर, 37 नंबर का, जम तम वर्ण नामकम्मम तम पंचविहम, किन्न वर्ण नामम, नील वर्ण नामम, उर्हील वर्ण नामम, हालिद्ध वर्ण नामम, सुक्किल वर्ण नामम चेदी। जो वर्ण नाम कर्म है वह 5 प्रकार का है। कृष्ण वर्ण नाम कर्म, नील वर्ण नाम कर्म, रुधिर वर्ण नाम कर्म, हारिद्र वर्ण नाम कर्म और शुक्ल वर्ण नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से शरीर संबंधी पुद्गलों का कृष्ण वर्ण उत्पन्न होता है वह कृष्ण वर्ण नाम कर्म है। इसी प्रकार शेष वर्ण नाम कर्मों का भी अर्थ कहना चाहिए। देखो द्रव्य लेशा जो हम कहते हैं उसके नाम कृष्ण नील का पोत बीत पद्म शुक्ल है, परंतु यहाँ जो वर्ण नाम कर्म जो है वो अलग अलग, तो इनके कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। कुछ कितने अंश में काला, कितने अंश में हरा लाल, वो जो यानी काला नीला लाल पीला और सफेद, ये 5 बेसिक हैं। इसी प्रकार शेष वर्ण नाम कर्मों का भी अर्थ कहना चाहिए। जब वर्ण कहते तो एक सिंगल हम लेते हैं, परंतु उसके इतने भेद हैं। जम तम गंध नाम कम्मम तम दुविहम, सुरही गंधम दुरही गंधम चेली। जो गंध नाम कर्म है वह 2 प्रकार का है, सुरभि गंध और दुरभि गंध। जिस कर्म के उदय से शरीर संबंधी पुद्गल सुगंधित होते हैं वह सुरभि गंध नाम कर्म है, और जिस कर्म के उदय से शरीर संबंधी पुद्गल दुर्गंधित होते हैं वह दुरभिगंध नाम कर्म है। अब रस नाम कर्म बताएंगे। जब हम पुद्गल के जो गुण और उसकी पर्याय देखते थे तो उसकी यही पर्याय देखी थी हम, वर्ण की 5 वर्ण गुण की 5 पर्याय। अभी वैसे वैसे ये 5 नाम के नाम कर्म है, और उसके निमित्त से शरीर में वैसा वर्ण, वैसा गंध, वैसा रस पाया जाता है। जो रस हाँ जम तम रसनाम कम्मम तम पंचविहम तित्तनामम कड़ुनामम कसायनामम अम्बनामम महुरनामम छेदी। जो रसनाम कर्म है वह पांच प्रकार का है, तिक्त नाम कर्म, कटुक नाम कर्म, कषाय नाम कर्म, कषाय लाइने वो तो तूरा तूरा तुरट कहते मराठी में, तूरा आंवला कैसा होता है तूरा, या वो फिटकरी फिटकरी कैसे होती वो उसको कषायला कहते। आम्ल नाम कर्म और मधुर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर संबंधी पुद्गल तिक्त रस से परिणत होते हैं। तो शरीर के पुद्गल भी तिक्त रस तिक्ते ने तीखा हाँ होता है क्या है? हाँ बोलो होता हुआ। मिर्ची क्या है? वो भी उसका शरीर है ना, वनस्पति का, वो तीखा है। हम मनुष्य शरीर की बात देखते होगा बिल्कुल, अभी पुद्गल है तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, अभी उतना जो जैसे मिर्ची जैसा है वैसा नहीं होता है, परंतु कुछ मात्रा में वो बात अलग है। वो एसिडिटी के जलन होते तो पेट में एसिड हो जाता है, वो बात अलग है। हाँ अकृत्रिम चैत्यालय में पांच वर्ण वाली। हाँ ये सभी जो पुद्गल परमाणु में तो ये सारे एक एक परमाणु जुदा जुदा है, उसके अपने अपने वर्ण हो गए ही, अब उसके कॉम्बिनेशन में फिर कोई अन्य वर्ण तैयार हो जाता है। केवल लाल भी है तो उसमें कितने शेड्स होंगे कि नहीं होंगे। हाँ पेज नंबर है 75। हाँ दो तीर्थंकर रक्त वर्ण के, जैसे हरित रक्त और श्याम वर्ण सुवर्ण वर्ण ऐसा बताए थे ना। ये हम पढ़ रहे थे 39 का अर्थ। जिस कर्म के उदय से शरीर संबंधी पुद्गल तिक्त रस से परिणत होते हैं वह तिक्त नाम कर्म है। इसी प्रकार शेष रस नाम कर्मों का अर्थ कहना चाहिए, यानी वैसे वैसे रस वाले वो शरीर के परमाणु होते हैं। जम तम पास नाम कम्मम तम अठविहम कक्खड़ नामम मऊ नामम गुरु नामम लहू नामम निद्ध नामम लुख नामम सीद नामम उसुण नामम छेदी। ये कितने शब्द प्राकृत से डायरेक्ट मराठी में आए ना। कक्खड़म मराठी में कड़क कहते हैं, मऊ मऊ तो ऐसा शब्द है मराठी में, मऊ है ना एकदम वो नरम। देखो उसके अर्थ नीचे देखते हैं। जो स्पर्श नाम कर्म है वह आठ प्रकार का है, कर्कश नाम कर्म मृदु नाम कर्म। एक्चुअली मराठी में उसका भाववासन ज्यादा हो जाता है कड़क और मऊ ऐसा, वो कर्कश और मृदु कहने से वो इतने वो भाव पकड़ में नहीं आता है। उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन गुरु का नाम यानी भारी, लघु का नाम कर्म हल्का, स्निग्ध नाम कर्म चिकना, रुक्ष नाम कर्म लुखा, शीत नाम कर्म और उष्ण नाम कर्म। ये नाम कर्म के भेद है और उसके उदय में शरीर वैसे वैसे पुद्गल पाए जाते हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर संबंधी पुद्गलों के कर्कशता होती है वह कर्कश नाम कर्म है। इसी प्रकार शेष स्पर्श नाम कर्मों का अर्थ कहना चाहिए। छहत्तर पृष्ठ पर आते अभी जम तम आणुपूर्वी नाम कम्मम तम चौविहम। आणुपूर्वी की बात कर रहे थी, हमने देखा था ना विग्रह गति में उसका उदय होता है और जो जिस गति का उदय है उसी आणुपूर्वी का उदय है। जैसे मनुष्य गति का उदय चल रहा उसके साथ साथ मनुष्य गत्यानुपूर्वी का, कहाँ विग्रह गति नहीं परंतु मनुष्य गत्यानुपूर्वी है तो मनुष्य के वो भव की तरफ ले जा रहे विग्रह गति में गमन कराती है, एक कार्य वो है और दूसरा आकार पूर्व का चल रहा है, ये दो उसके कार्य है। ये उसकी चर्चा इसमें हो गई थी। तो जो जम तम आणुपूर्वीणाम कम्मम तम चौविहम निरेगदी पाउगाणुपूर्वीणाम तिरिक्खगदी पाउगापूर्वीणाम मनुषगदी पाउगाणुपूर्वीणाम देवगदी पाउगाणुपूर्वीणाम चेदि। यानी उसका पूरा नाम है नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, खाली उसको नरक गत्यानुपूर्वी भी कह देते हैं। जो आनुपूर्वी नाम कर्म है वह चार प्रकार का है, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्म, तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्म, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्म और देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्म। विग्रह गति में केवल एक दो या तीन समय जितने मोड़ लेते हैं वो मोड़ के पहले पहले बस बनती, तो हर समय जो गति बनती उसके साथ उसकी प्रायोग्यानुपूर्वी बनती ही रहती है। उदय कब होगा? मात्र विग्रह गति। अब जो रुजु गति से जाता होगा उसका तो उसका उदय भी नहीं होगा, ये पड़ा रहेगा। हम देखते हैं ना केवली भगवान के मनुष्य गति का उदय चल रहा है, प्रायोग्यानुपूर्वी पड़ी रहेगी और फिर लास्ट में उसका नाश हो जाएगा, उसका कार्य कुछ नहीं होगा, पड़ी रहेगी सत्ता। उसका अर्थ देखते हैं, जिस कर्म के उदय से नरक गति को गए हुए और विग्रह गति में वर्तमान जीव के, यानी नरक गति उसकी चालू हो गई, नरक गति में गए नहीं, नरक में पहुंचे नहीं अभी, अभी मूल शरीर छूटा तभी से नरक गति का नरकायु का उदय शुरू हुआ, तो वो जीव नरक गति में गया ऐसा कहेंगे ना, वो उसके क्षेत्र में नहीं पहुंचा अभी, नरक गति शुरू हुई है। तो नरक गति को गए हुए और विग्रह गति में वर्तमान, कहां पर है वो? विग्रह गति में। ऐसे जीव के नरक गति के योग्य संस्थान होता है, हाँ नरक गति के योग्य संस्थान होता है, परंतु वो पूर्व का है, परंतु वो नरक गति के योग्य का प्रायोग्य पूर्व का आकार होता है, नरक गति का आकार नहीं हुआ है पूर्व का, क्योंकि संस्थान नाम कर्म उसका उदय कब होगा वहां पहुंचने पर। देखो ये बात पहले हो चुकी आनुपूर्वी की बात, हाँ देखो गुरु लोग हो गए ना आनुपूर्वी 56 पेज। छप्पन प्रश्न निकालना, देखो ऊपर हम देख रहे थे सेकंड लाइन के लास्ट में, अभी आपकी लाइन जरा देख लेना कौन सी है क्या, पूर्व और उत्तर शरीरों के अंतराल वर्ती मिला, पेज नंबर वही है ना सारे, यानी पूर्व शरीर ने भी मनुष्य से नरक गया है, तो पूर्ववर्ती यानी मनुष्य शरीर छोड़ा उसने और अभी नारकी का शरीर वहां जाने पर धारण करेगा, उसके अंतरालवर्ती एक दो और तीन समय में वर्तमान जीव के जिस कर्म के उदय से जीव प्रदेशों का विशिष्ट आकार विशेष होता है, विशिष्ट बताया वो नरक गति के पूर्व का उसके जाने के योग्य आकार उसको विशिष्ट आकार कह दिया, उस कर्म की अनुपूर्व यह संज्ञा है। अभी उसके नीचे का समाधान देखो, शरीर ग्रहण करने के प्रथम समय से ऊपर उदय में आने वाले संस्थान नाम कर्म का विग्रह गति के काल में उदय का अभाव पाया जाता है, यानी वो नारकी जैसा वो आकार वो वहां जाने पर धारण करेगा, और यदि अनुपूर्वी नाम कर्म न हो तो विग्रह गति के काल में जीव अनियत संस्थान वाला हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है क्योंकि जाति प्रतिनियत संस्थान विग्रह काल में पाया जाता है, जाति प्रतिनियत यानी वो तो उस जाति के योग्य वैसा, पहला तो छूट गया है अब यथा योग्य आकार धारण करता है। तो वहां पहुंचने पर होगा विग्रह गति में, तो उसके योग्य संस्थान नाम कर्म का उदय ही नहीं यहाँ पर, मुंडक संस्थान का उदय कब होगा वहां पहुंचने पर, इसीलिए उसके योग्य बताया, उसके योग्य ऐसा लेना। अभी मनुष्य जैसा मनुष्य या ऐसा नहीं लेना उसको, फिर भी वो मनुष्याकार, क्योंकि पहले का आकार बदलने का कोई कारण नहीं रहा, क्योंकि वो कर्म के निमित्त से वो आकार होता है, परंतु भी विग्रह गति में जो कुछ उसका ऐसा, क्योंकि ऐसे प्रदेश ऐसे चले जाते हैं ना हाइट वाइज, और इस तरह से वो लंबी रेशा जैसे आ जाती है, तो जो यथायोग्य आकार है इस तरह इसका अर्थ लेना। जीव कांड में स्पेशली लिखा है वहां पर, वो पूर्व या कर्म कांड में, यहाँ तो नरक गति के योग्य संस्थान होते हैं, उसके प्रायर जो योग्य उसको नरक गति के योग्य, नरक गति वाला संस्थान नहीं लेना, प्रायोग्य पूर्व में योग्य जो है ऐसा। दूसरा उसका कार्य नरक गति के प्रति ले जाए, नरक को क्षेत्र के प्रति ले जाता है, ऐसा भी उसका एक कार्य बताया, पहले हम देख चुके थे वो उसके पहले पेज पर होगा शायद। अभी कौन सा बताया था मैंने, 56 ना, वो उस गति के प्रति ले जाता है ऐसा भी उसमें था, नीचे नीचे उसी पेज पर, पेज नंबर 56 में है। देखो नीचे से जो दूसरा समाज है ना, आनुपूर्वी नाम कर्म से इच्छित गति में गमन होता है, इच्छित गति में इच्छित यानी हमने जो इच्छा की ऐसा उसका अर्थ नहीं समझना, अभी जहाँ जाने वाला है पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है आनुपूर्वी से होता है। एक तो आकार, हाँ पूर्व भव का आकार कहो या नरक के प्री ये प्रायर आकार जो यथायोग्य आकार ऐसा हम कहेंगे वहाँ, यथायोग्य आकार ऐसा कहेंगे, और दूसरा वो उस क्षेत्र के प्रति ले जाता है, उसको क्षेत्र विपाकी कर्म कहते हैं, ये एक ही क्षेत्र विपाकी कर्म। अब आगे बढ़ते हम 76 पेज पर थे ना, आगे अगुरु लघु की बात करेंगे, 42 नंबर का सूत्र, अगुरु अलहु फिर अलहु अ ऐसा शब्द है पूरा, अगुरु अलहु अ नामम उघाद नामम परघाद नामम उत्साह नामम आदाव नामम उज्जोव नामम, ये सब इकट्ठा एक लिए। वैसे तो हम चार की जोड़ी करते हैं ना, अगुर लघु उपघात परघात उच्छ्वास, ये याद रखते हो चार एक साथ आत्मपर उद्योग, क्योंकि हमें तो इतनी प्रकृतियों की यहाँ चर्चा करना है। अगुरु लघु नाम, देखो जब हिंदी में अभी हम पढ़ते हैं मराठी में अगुरु और अलघु, उसका अगुरु लघु शब्द बना, अ शब्द दोनों जगह लगा, जिसे समझदार में आता ना अबद्ध स्पृष्ट, अबद्ध रसपर्श अस्पृष्ट, इसे अगुरु लघु नाम कर्म उपघात नाम कर्म, ये इसका कार्य क्या होता है वो पहले हमने चर्चा की है। परघात नाम कर्म उच्छ्वास नाम कर्म आताप नाम कर्म उद्योत नाम कर्म, आताप भी कहते आतप भी कहते, शंका यहाँ पर इन प्रकृतियों का निर्देश किस लिए किया है, निर्देश ने उनके नाम क्यों बताए हैं। समाधान, नाम कर्म की 42 पिंड प्रकृतियां है, यह निर्देश प्राधान्य पद की अपेक्षा है, इस बात के बतलाने के लिए यहाँ पर उक्त प्रकृतियों का निर्देश किया गया है, क्योंकि सूत्र में बतलाई गई इन प्रकृतियों के पिंड प्रकृतिता का अभाव है, अर्थात ये प्रकृतियां भेद रही थे। अभी तक जो हमने देखी गति जाति शरीर बंधन संघात संसार सोनन अंगोपांग स्पर्श रस गंधवर्ण ये सब, और आनुपूर्वी और विहाय गति, अभी विहाय गति बताने वाले हैं बाद में, परंतु ये पिंड प्रकृतियां नहीं है, ये सिंगल है, इसमें पिंड क्योंकि इसके और भेद नहीं है, जैसे वर्ण नाम कर्म के हमने और भेद देखे पांच, स्पर्श नाम कर्म के आठ भेद, तो ऐसे भेद वाला नहीं है। जैसे गति के चार भेद देखे थे, ऐसे पिंड प्रकृति नहीं है। फिर भी पिंड प्रकृतियों में सिंगल प्रकृतियों को भी गिनाया है, तभी उसको ग्रुप करके उसकी बात इकट्ठी बताइए। क्योंकि 93 अलग अलग याद करने के बदले 42 याद रखना आसान है। गति जाति कहने पर हमको मालूम है चार गति कौन सी, पांच जाति कौन सी, पांच शरीर कौन से, वो फटाफट याद हो जाते। अभी इनको भी ग्रुप में रखा है। आगे बढ़ते हैं। जम तम विहाय गई नाम कम्मम तम दुविहम, पसत्थ विहाय गदी अपसत्थ विहाय गदी चेदी। जो विहाय गति नाम कर्म है दो प्रकार का है, प्रशस्त विहाय गति और अप्रशस्त विहाय गति। देखो जो चाल है ना जीव की कैसी है, कैसे हाथी कैसा चलता है, बदक कैसा चलता है, तो उनकी जो चलते हैं जीव स्वयं चलकर चलते, तो उनकी वो उसके लिए विहाय गति नाम कर्म का उदय है। एक इंद्रियों के विहाय गति नहीं होती, बाकी सभी त्रसों को विहाय गति नाम कर्म का उदय पाया जाता है। तो जिस कर्म के उदय से जीवों के सिंह कुंजर, एक कुंजर क्या होता है अश्विन भाई, हाथी, हाथी और आप लोग लिखे नरोवा कुंजरोवा, वो मालूम है नरोवा कुंजरोवा का, नहीं मालूम, वो सुना है ना शब्द मालूम है, कहाँ पर यूज हुआ था। नहीं 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 नहीं, एक महाभारत में आता है ना, वो कौन जयद्रथ था ना, कौन था, अश्वत्थामा, 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 अश्वत्थामा नाम का हाथी था और अश्वत्थामा उसका भी लड़का था, तो अश्वत्थामा मर गया, कहीं उसने खोटा बोल दिया द्रोणाचार्य को, हाँ उसका लड़का था वो, तो नरोवा कुंजरोवा वो नहीं कहा, उस नाम का लड़का मरा कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा। धर्म ने बताया, अच्छा हाँ, क्योंकि वो तो सत्य बोलने वाला था ना, कुंजर हो। पर से किसने पूछा कृष्ण क्यों नरक गया, जैसे रावण की तो उसके ये आता है ना कि परस्त्री का उसने मोह रखा वगैरह वगैरह, श्री कृष्ण की बात। नहीं नहीं वो तो ठीक है ना, कृष्ण के लिए ऐसा क्या आता है, मायाचारी तो बहुत है ना। अभी हम पूरे लाइफ टाइम से ऐसा, जब उसका नरकायु का बंद हुआ होगा तब का परिणाम उसका होगा ना। कोई भी क्रोध हो, मान हो, माया या लोभ हो, अति तीव्र, अत्यंत तीव्र जो परिणाम, वो नरक गति नरकायु आदि के, अत्यंत तीव्र में तो नरक गति बनती है, परंतु उसके योग्य आयु के योग्य मध्यम। जब गिर जाता है ना सम्यक, तो सम्यक दृष्टि को तो नरकायु बंधेगी नहीं, बिल्कुल हाँ। नारायण पद बांधा होगा, वो बांधेंगे जब आएंगे बाद में, बांध के नहीं गए हैं, कृष्ण ने बांधी होगी, कृष्ण ने बांधी है, रावण की तो अभी बांधना बाकी है। कुठे तरी अच्छा आईकले पढ़ा नहीं है, बस पढ़ा है, मगर हमने उस भी बात की थी, बलभद्र जो है, नहीं बलभद्र ने उसके साथ उसका भाई बलराम, बलराम तो हमने महाबंध में पढ़ा था ना कि बलराम और ये दोनों इकट्ठे ने वो मोक्ष जाएंगे मनुष्य भव में आकर। पर हमने ये भी सुना था कि तीसरे नरक में तीर्थंकर प्रकृति वाले की मैक्सिमम आयु 3.5 यानी साधिक, साधिक 3 सागर होती है, और इसकी बलराम की हमने देखी थी कुछ 7 वगैरह होती है, तो वो मैच नहीं हो रहा था, पता नहीं कैसे क्या। हाँ बहुत सारे हैं, हाँ वैसे सीता का जीव जाके वहाँ संबोधन करता है ऐसा कहते हैं, परंतु शुक्ल लेशा वाले जाते ही नहीं नरक में। कौन? रावण? प्राणत में है। हाँ वही तो, यानी ऐसे कुछ बातें मैच नहीं होती। अभी जो कुछ यथा योगी यानी उनके वो उतना ऐसा नहीं, वो मैच नहीं होता है करनाल के नियमों के साथ। पर ऐसे थोड़ी कहानी, थोड़ी ऐसी खोटी कहानी लिखते हैं। वही अभी उसके पीछे का कारण नहीं मालूम उनको, मगर ऐसी कुछ बातें जो है वो मैच नहीं होती। हाँ जाते ही नहीं, क्योंकि हमने देखा नहीं इसमें उसका क्षेत्र तो छह राज्य घटित किया था शुक्ल लेशा वालों, जाते ही जाते ही नहीं, गमन की पात्रता है जाते ही नहीं, उनके ऐसे विकल्प नहीं होता। अरे नरक में जाते ही नहीं, वो ये मध्य लोक तक ही आते हैं, नीचे नहीं जाएंगे ऐसा बोलते हैं रावण के लिए संबोधन गए, वो तो नहीं हो घटित नहीं हो रहा। चलो आगे, बहुत सारी ऐसी बातें हमें एक जन मिला था किसी गांव में राजकोट में, वो कहता है कि जय श्री कृष्ण कहने वालों को क्या दोष है, हम तो जय श्री रावण भी कहेंगे क्यों। अरे प्रथमानुयोग में, अरे प्रथमानुयोग में उनको बताया है ना तीर्थंकर का जीवन, भले अभी तीन चार भव बाकी है। हाँ, तो जय श्री कृष्ण अभी वो भले नरक में है परंतु वो भी तीर्थंकर है, यहाँ वो आने वाले हो गए। आप स्वामी जी की जय बोलते हैं क्यों, ऐसा उन्होंने उन्होंने भी तीर्थंकर होने वाले है तो हम इनको भी बोलेंगे, कहते हम जय श्री रावण कहेंगे, ऐसा वो बहस कर रहा था। हाँ वर्णन इसलिए रावण का है क्योंकि वो इतना बलशाली, इतना क्योंकि त्रिखंडी था वो, और उसको ये इन्होंने हराया, वो तो विद्याधर था और ये तो भूमि गोचर यानी जो सावकोत्तम। श्रावक श्रावकोत्तम श्रेणी को चलो आगे, और ऐसा भी है ना बाद में नरका भी बांधी होगी उसमें गिर कर। हाँ क्योंकि वो तो आता है ना, उन्होंने आदिनाथ की स्तुति की थी कैलाश पर्वत पर जाके, वो वाद्य टूट गया तो हाथ की नस निकाल कर उसका कुछ ऐसा वो वर्णन आता है उसका। बाली ने उनको अंगूठे से दबाया था। ये प्रथमानुयोग में बहुत सारी बातें हैं, अभी यहाँ हम आगे बढ़ेंगे, ये कुंजर से सब स्टोरी निकली। जिस कर्म के उदय से जीवों के सिंह कुंजर और वृषभ ने बैल के समान प्रशस्त गति होवे वह प्रशस्त विहाय गति नाम कर्म है, और जिस कर्म के उदय से गर्धव ऊंट और हुआ सियालों के समान, गर्धव यानी गधा, सियालों के समान अप्रशस्त गति होवे वह अप्रशस्त विहाय गति नाम कर्म है। देखो मनुष्यों की भी चाल को कभी मनुष्य की उपमा नहीं देगी, तीरियंचों की उपमा देते हैं तो मनुष्य खुश खुश हो जाता है, नहीं समझे। हाथी के समान गजगामिनी कहेंगे, मृगनयनी कहेंगे, हाँ कोकिल कंठी कहेंगे, तो हरणाक्षी जो मीनाक्षी क्या होता है, मीन यानी मत्स्य, मत्स्य जैसी आंखें, यानी प्राणी उपमा किसकी दी जाती है, जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं, तसनामम थावर नामम। अब ये पिंड नहीं है, फिर सिंगल सिंगल, फिर भी एक एक ग्रुप में उसकी बात बताएं, और याद रखने के लिए भी ये आसान होता है। देखो हम त्रस बादर पर्याप्त अपर्याप्त ऐसा अगर हम देखेंगे तो उसके और विरुद्ध, तो त्रस स्थावर बादर अपर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त साधारण प्रत्यय, किस तरह से हम उसको याद सकते हैं। अभी इन्होंने अलग से बताया है, देखो तस नामम थावर नामम बादर नामम सोम नामम पद्यत नामम एवं जाव निम्न तिथेर नामम चेदि। जाव यानी वहां तक, वहां तक तो हमको याद रखना है, कहां तक यानी त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म साधारण नहीं, प्रत्येक और साधारण, बादर और सूक्ष्म की जोड़ी है, प्रत्येक और साधारण ये हो गए ना। और फिर वो आगे वाली स्थिर अस्थिर, वो छह जोड़ी स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदे अनादे यशस कीर्ति और यशस्की, और फिर तीर्थंकर निर्माण, ये वहां तक की सभी समझ लेना। इसलिए सबको इकट्ठा बता दिया। निम्न तिथेर नामम चेदी, वहां तक देखो त्रस नाम कर्म स्थावर नाम कर्म बादर नाम कर्म सूक्ष्म नाम कर्म, अभी इन्होंने पूरे बताई लिस्ट, पर्याप्त नाम कर्म इनको आदि लेकर निर्माण और तीर्थंकर नाम कर्म तक, अर्थात अभी अर्थात करके वो बता रहे हमारे लिए। अपर्याप्त नाम कर्म, क्योंकि पर्याप्त ऊपर बता दिया, पर्याप्त के साथ अपर्याप्त की वो उसका प्रतिपक्ष है। प्रत्येक शरीर नाम कर्म साधारण शरीर नाम कर्म, स्थिर नाम कर्म अस्थिर नाम कर्म, शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म, सुभग नाम कर्म दुर्भग नाम कर्म, सुस्वर नाम कर्म दुस्वर नाम कर्म, आदेय नाम कर्म अनादेय नाम कर्म, यशस कीर्ति नाम कर्म अयशस कीर्ति नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म। देखो ये अभी याद रखने के लिए आसान है। हमने गति जाति शरीर बंधन संघात संस्थान अंगोपांग सहनन वर्ण रस गंध स्पर्श फिर अनुपूर्वी, उसके बाद इन्होंने अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास आतप उद्योग, उसके बाद उन्होंने विहार गति बताई। ये तो पिंड हो गया, इन्हें पिंड पिंड जो जो कुछ सब यहाँ हो गया। अभी उसके बाद किसको लिया, त्रस स्थावर। अभी ये 10 जोड़ी है, यानी त्रसादि 4 और स्थिरादि 6 जोड़ी जोड़ी, और तीर्थंकर निर्माण ये 2 निर्माण उन्होंने लिया, फिर बाद में तीर्थंकर। ख्याल में आई बात, गति जाति शरीर बंधन संघात संस्थान अंगोपांग सहनन वर्ण गंध रस स्पर्श अनुपूर्वी। हम वहाँ विहाय गति इसलिए कहते कि तो पिंड के एक इन्होंने पहले वहाँ पर अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास आतप उद्योग फिर अनुपूर्वी को लिया, यहाँ उन्होंने उसके बाद ये 10 युगल लिया। कौन से, त्रस स्थावर पर्याप्त अपर्याप्त बादल सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त फिर प्रत्येक और साधारण, ये 4 हो गए जोड़ी, फिर 6 जोड़ी स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदेय अनादेय यशस कीर्ति अयशस कीर्ति निर्माण और तीर्थंकर। क्योंकि ये एक बार हम थोड़ा याद रखेंगे ना, ये बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगी। तभी जब मिथ्या दृष्टि कौन सी बांधता है, समय दर्शन होने पर इनमें से कौन सी नहीं बंधेगी, वो सारी लिस्ट आने वाली है। प्रायोगिक लब्धि से ही कितनी प्रकृतियों का बंध रुकते हुए चला जाता है, स्टेप बाय स्टेप, पहले कौन सी रुकेगी बाद में कौन सी रुकेगी, वो सब उसके नंबरिंग आ जाएगी। उसी को वो महादंडक वगैरह कहे थे, 3 दंडक बताने वाले। इसलिए पहले इतनी सारी विस्तार से चर्चा ये इनके नामों की हो रही है। ये नाम कर्म इतना बड़ा है विस्तार, बाकी तो ज्ञानावरण की 5 है, दर्शनावरण की 9 है, वेदनी के 2 है, मोहनी के 28 है, वो तो याद रखे ऐसे हो जाते हैं। अंतराय की भी तो आसान है, बाद में बताएंगे, आयु 4 बता चुके। ये नाम कर्म की इतनी लिस्ट बड़ी है, अभी आगे बढ़ेंगे। इस सूत्र का अर्थ पहले अर्थात 28वें सूत्र की व्याख्या में निरूपण किया जा चुका है। इन सभी कर्मों के क्या क्या कार्य है वो हमने देख लिए थे। आपको दोबारा अगर देखना है ना सुनी देन तो पंचलब्धि पुस्तक है, उसके पहले तीन चैप्टर में यही बात है सर, मूल प्रकृतियों के नाम, उत्तर प्रकृतियों के नाम, उनके कार्य विस्तार से इकट्ठा एक जगह लिया हुआ। तथापि दोबारा यहाँ उक्त प्रकृतियों के कहने पर ये इसलिए वो रिपीट किए, पुनरुक्त दोष नहीं आता, पुनरुक्त ने दोबारा बताना ये कहीं कहीं दोष माना जाता है, परंतु उसकी याद देने से मंद बुद्धि के लिए वो ज्यादा आसान हो जाता है, इसलिए इसको पुनरुक्त दोष नहीं कहते। अध्यात्म में भी देखो, गुरुदेव को सुना होगा आपने, वही वही बात अलग अलग एंगल से गोल गोल कर, वो अध्यात्म वो दोष नहीं कहलाता, उससे तो आध्यात्मिक परिपाक होता है, रस का परिपाक होता है। इसलिए उसमें देखो आप उनकी सुनते समय भले वही बात आती है परंतु वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, उसका कार्य होता है। यह पुनरुक्त दोष नहीं आता क्योंकि ये सूत्र पठित प्रकृतियां पिंड प्रकृतियां नहीं है, ये सबको मिलकर नाम कर्म की 42 पिंड प्रकृतियां कह दी थी, परंतु ये पिंड प्रकृतियां नहीं है इसलिए उसको अलग से बता दिया। इस बात के बतलाने के लिए उनका पुनः प्ररूपण किया गया है। गोदस्य कम्मस्य दुवे पयडियो, उच्चा गोदम चेव नीचा गोदम चेव, गोद हुआ गोदम चाहिए। गोत्र कर्म की दो प्रकृतियां हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जिस कर्म के उदय से जीवों के उच्च गोत्र होता है वह उच्च गोत्र कर्म है। गोत्र, कुल, वंश और संतान ये सब एकार्थवाचक नाम है। जिस कर्म के उदय से जीवों के नीच गोत्र होता है उसे नीच गोत्र कर्म कहते हैं। देखो तीर्यंचों के और नारकियों के तो नीच गोत्र ही पाया जाता है, मनुष्यों में नीच गोत्र भी होता है, उच्च गोत्र भी होता है, देवों के तो उच्च गोत्र ही है। अंतरायस कम्मस पंच पयडियो, ऐसा कहीं पूरा पढ़ा था, वो पंचमोनसन में गोत्र का उदय ऐसा लगता है तो मनुष्यों में होता है कि तीर्यंचों में होता है, तीर्यंचों में भी होता है ऐसा हमने भी, मुझे याद आया पंचमोनसन वर्ती। हाँ उदय की विच्छेति बिना चौथे गुणस्थान में 17 की है, पांचवे गुणस्थान में 8 की है। देखो प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोग उदय की विच्छेति ना पांचवे में है, पांचवे में है प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोग, तीर्यंच गति, तीर्यंच आयु, नीच गोत्र और उद्योग पांचवे गुणस्थान में इनकी उदय की विच्छेति है, यानी पांचवे गुणस्थान के उसमें भी नीच गोत्र है तीर्यंचों को, यानी वो हो सकता है किसी का परंतु उसका उदय है पांचवे। मनुष्यों में नीच गोत्र उच्च गोत्र का पलटा हो सकता है ऐसा मुझे लगता है, ये पहली बात हमने पढ़ी थी कहीं, ऊपर के गुणस्थानों की अपेक्षा कुछ बात बताई थी। अरविंद भाई देख रहे हो ठीक, हाँ? कहीं आए तो आप बताना कल, अभी यहाँ अंतराय की बात बता रहे। अंतराय से कम्मस पंच पयड़ियो ये पढ़ा था ना, दानंतरायम, लाहंतरायम, भोगंतरायम, परिभोगंतरायम, वीर्यंतरायम चेदि। अंतराय के लाहंतराय लाहंतराय हाँ अंतराय कर्म की पांच प्रकृतियां है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, परिभोगांतराय और वीर्यांतराय। जिस कर्म के उदय से दान देते हुए जीव के विघ्न होता है वह दानांतराय कर्म है। जिस कर्म के उदय से लाभ में विघ्न होता है वह लाभांतराय कर्म है। वैसे है तो घाती कर्म जीव के गुणों का वो घात होता है। समझाने के लिए तो हम बाह्य में ही उसका लाभ दान वगैरह की बात बताएंगे, परंतु ये दान लाभ भोग उपभोग वीर्य तो जीव के गुण है, तो उसमें ऐसा भी समझना वो अपने को ही वो दान देता है ना, सुख का अतीन्द्रिय सुख का वगैरह उसमें ये लगा सकते हैं। जिस कर्म के उदय से लाभ में विघ्न होता है वह लाभांतराय कर्म है। जिस कर्म के उदय से भोग में विघ्न होता है वह भोगांतराय कर्म है। जो वस्तु एक बार भोगी जाती है वह भोग है, जैसे तांबूल, भोजन, पान आदि। यानी जो रोटी खाते ना एक ही बार खाएंगे, उसी रोटी को कैसे दोबारा खाएंगे, पर थाली तो उसी थाली में फिर दोबारा धोके हम उसको यूज करती है। तो बार बार जिसका उपभोग हो जाता है वो परिभोग कहते हैं। जिस कर्म के उदय से परिभोग में विघ्न होता है वह परिभोगांतराय कर्म है। जो वस्तु पुनः पुनः भोगी जाती है वह परिभोग है, जैसे स्त्री, वस्त्र, आभूषण आदि। जिस कर्म के उदय से वीर्य में विघ्न होता है वह वीर्यांतराय कर्म है। वीर्य, बल और शक्ति ये सब एकार्थक नाम है। ये शरीर का बल नहीं समझना है, जीव की अपनी शक्ति, जीव का अपना बल, अपना पुरुषार्थ। जैसे हमेशा ज्ञान में भी वो वीर्यांतराय का उपशम लेते हैं, अकेले ज्ञानावरण का नहीं, उसके साथ साथ वीर्यांतराय का भी बताते हैं। इस प्रकार प्रकृति समुत्कीर्तन नाम की प्रथम चूलिका समाप्त हुई। हाँ, यहाँ लिखा है, पहली बार हम अमेरिका गए थे, ये लेक्चर के बाद गए थे 15/9/4। आगे देखते 79 पेज। अब यहाँ विद्या चुलिया यानी द्वितीय चुलिका यहाँ से प्रारंभ होती है। एतो ठाण समुकितनम वर्ण इसामो, यहाँ एक आंकड़ा डालना, आपके उसमें डाला है क्या? हमारे में नहीं है, पूरा ये नई पुस्तक उन्होंने सुधार कर लिखी है। हाँ, अब इससे आगे स्थान समुत्कीर्तन का वर्णन करेंगे। प्रकृतियां बताई, अभी प्रकृतियों के स्थान बताएं। इतने प्रकृतियों का एक साथ बंध होता है या इसको उदय होता है, उसको उसके स्थान कहेंगे। बंध स्थान जुदे है, उदय स्थान जुदे है। शंकाकार पूछता है स्थान किसे कहते हैं? समाधान, जिस संख्या में अथवा जिस अवस्था विशेष में प्रकृतियां पाई जाती है उसे स्थान कहते हैं। यानी जिसके उसके अलग अलग वेरिएशंस, यहाँ तो संख्या की बात करेंगे और फिर उनके नाम भी बताएंगे। स्थान, स्थिति और अवस्थान ये तीनों एकार्थक है। समुत्कीर्तन, वर्णन और प्ररूपण, इनका अर्थ एक ही कहा गया है। यानी स्थान, स्थिति और अवस्थान ये अलग बात, समुत्कीर्तन, वर्णन और प्ररूपण ये एकातर, यानी बस बताना है, इतना बताना। स्थान की समुत्कीर्तना को स्थान समुत्कीर्तन कहते हैं, यानी स्थानों का वर्णन करेंगे। पहले प्रकृति समुत्कीर्तन ने प्रकृतियों का वर्णन किया था, उसका वर्णन अर्थात व्याख्यान करेंगे, यह अर्थ कहा गया है। फिर शंकाकार पूछते हैं, यह स्थान समुत्कीर्तन नाम की चूलिका किस लिए आई है? चूलिका किस लिए, तो पहले जो 6-5 पुस्तकों में जो विषय आ चुके हैं उसके लिए यह चूलिका बनाई है। तो ये कहने की क्या जरूरत थी? समाधान, पहले प्रकृति समुत्कीर्तन नाम की चूलिका में जिन प्रकृतियों का प्ररूपण कर आए हैं, उन प्रकृतियों का बंध क्या एक साथ होता है अथवा क्रम से होता है? ऐसा पूछने पर इस प्रकार होता है, यह बात बतलाने के लिए यह स्थान समुत्कीर्तना नाम की चुलिका आई है। देखो, हम पहले देखते हैं, क्या नाम कर्म की हमने इतनी सारी प्रकृतियां देखी, वो क्या एक साथ बनती है? किसी को चार गति एक साथ नहीं बंधेगी ना, कोई एक गति बंधेगी, कोई एक जाति बंधेगी। समझ में आई बात? इसका ये बात हो रही है। शरीर कितने बंधेंगे एट ए टाइम? तीन तीन। तेजस कर्म तो हर समय बन रहे हैं, औदारिक होगा या वैक्रिक होगा, जो कुछ है। आरक के साथ चार बंधेंगे एक साथ। इस स्थान किसको कहना? ऐसे ज्ञानावरण की तो पांचों के पांचों बनते हैं, एक ही स्थान है। कहां से लेकर पहले गुण स्थान से दसवें तक बनता कहां है? ग्यारहवें में तो सात अवेदनी एक ही बनता है, तो ज्ञानावरण दसवें तक बनता है। जहां तक मोहिनी का उदय है वहां तक ये सब बार की बन रहे, बाकी एक वेदनी बाघ नहीं बनता है। तो दर्शनावरण की पहले गुण स्थान में तो नौ के नौ बन देगी, स्थान वृद्धि निद्रा वो बंद की उच्चित हो जाए कि दूसरे में छह ही बन देंगे, और फिर उसके बाद वो निद्रा प्रचला की बंद उच्चित आठवें में हो जाए, उसकी वो बात बताएंगे, बाद में चार बन देंगे। तो इस तरह से उसको स्थान कहते हैं, वो हम देखेंगे। जैसे अंतराय तो पांचों ही बन रहे, कहां से लेकर पहले से दसवें तक। वेदनी कितनी बन देगी एट ए टाइम? या तो साता वेदनी बन देगी या असाता, भले असाता बंधना रुक भी जाएगा तो भी साता तो एक ही बंधेगी। हाँ, कोई गोत्र में भी एक बनती है, आयु भी एट ए टाइम एक ही बंधेगी जो कोई बनती है, और वो बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं भी बंधेगी। ये नाम कर्म के जो बंध स्थान है विशेष है, और मोहनी के भी जो है, मोहनी के भी गुणस्थान के अनुसार हम कह सकते। मिथ्या तो में 22 बंधेंगे, फिर 21 बंधेंगे, फिर 17 बंधेंगे, फिर वो जैसे कषाय कम हो जाएगी, 17 के बाद 13 का नंबर आएगा, उसके 9 बाद, तो उसके ये बंध स्थान कहलाते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे ये सब बातें आने वाली इसमें। अभी इसमें उदय के स्थान है कि नहीं मालूम नहीं है, ये बंध के स्थान मुख्यतः। हाँ, क्योंकि समय तो होता है तो कौन से नहीं बनते वगैरह उसकी बात है। हाँ, ये अभी दो नंबर का सूत्र। तम जहां, वह स्थान समुत्कीर्तन जैसे, यानी क्या है वो अभी बताने जा रहे हैं। वह स्थान समुत्कीर्तना किस प्रकार कही जाती है, ऐसा पूछने पर इस प्रकार कही जाती है, यह बतलाते हुए आचार्य पहले स्थानों के ही स्वरूप संख्यान का निरूपण करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। तम, अभी गुणस्थानों में वो उसके स्थान बताएंगे। मिथ्यादिष्टिस्स, सो यानी उसके मिथ्यादृष्टि के कौन सा स्थान है ऐसा, वा शासन सम्मादिष्टिस्स, वा सम्मा मिथ्यादिष्टिस्स, वा असंजद सम्मादिष्टिस्स, वा संजदा संजस्स, वा संजदस्स, वा संयत कहने से सारे आ गए उसमें, और बाकी पांचों गुणस्थानों के नाम बताएं। वह प्रकृति स्थान मिथ्या दृष्टि, मिथ्या हुआ है, मिथ्या दृष्टि, थ को य करना, वो थ को थ हो गया। मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत और संयत के होता है। किसके होता है? तो इनके अलग अलग हो गए, उनके अपने अपने स्थान जुदे जुदे हो गए। एट ए टाइम कितनी प्रकृतियां बन सकती है, उसके उनके जुदे जुदे स्थान हो गए। वह प्रकृति स्थान मिथ्या दृष्टि के अथवा सासाधन समय दृष्टि के, सम्यक मिथ्या दृष्टि के, असंयत समय दृष्टि के, संयता संयत के और संयत के होता है। किसके होता है ये बात पहले बता चुके, क्योंकि इनके इनसे अतिरिक्त अन्य बंधकों का अभाव है। ये बंधक यानी बंधक के स्थान बताने जा रहे हैं। तो बंधक कौन है? जिनके प्रकृति बनती है वो बंधक है। तो पांच गुणस्थान में पांच अलग अलग तो नाम आ गए और संयत कहने से ऊपर के सारे आ गए। अभी चौदहवें वाले को तो बंध नहीं है, ग्यारहवें बारहवें तेरहवें को एक सातावैन्य का बंध है। संयतों में जिसकी जो बात है वो सब बता देंगे। यहाँ अर्थात मिथ्या दृष्टि आदि पदों में ये जो नाम अलग अलग बताए उसमें प्रथमा के अर्थ में षष्ठी विभक्ति जानना चाहिए। उनके स्थान होते हैं मिथ्या दृष्टि स्थान, ऐसा उसका अर्थ। सबके मिलकर क्या बताए? ये जो स्थान होते हैं वो किसके होते हैं? इतने इतने जीवों के होते हैं। तो ये षष्ठी विभक्ति बताई मिथ्या दृष्टि स उसके, तो उसमें ऐसा समझना मिथ्या दृष्टि स्थान साधन समय दृष्टि स्थान इत्यादि प्रकार से संबंध करना चाहिए। शंकाकार पूछते हैं मिथ्या दृष्टि आदि बंधकों के, मिथ्या दृष्टि ये गुणस्थान का नाम है, वो बंधक जीव है, उनको स्थान यह नाम कैसे हुआ? समाधान, बंधकी कारणभूत प्रकृतियां जिस बंधक जीव में रहती है, इस प्रकार स्थान शब्द की उत्पत्ति करने से मिथ्या दृष्टि आदि बंधकों के स्थान यह नाम सार्थक हो जाता है। यानी वो बंधक जीव में मिथ्या दृष्टि, वो बंधक के कारणभूत प्रकृतियां कौन कौन सी है उसकी वहां चर्चा, उस जीव को भी स्थान कह देते हैं। संयत के स्थान होता है ऐसा कहने पर प्रमत्त संयत आदि आठ ही संयत गुणस्थानों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संयत भाव की अपेक्षा उनमें कोई भेद नहीं है। आठ कहाँ तक लेना? तेरहवें तक, वहां तक ही बंधक है। यह नौवां अर्थात अयोगी केवली गुणस्थान नहीं ग्रहण किया गया, क्योंकि उसके बंधक पने का अभाव है। क्यों अभाव है? ब्रह्मा बताएंगे। बंधक के कारण क्या है? मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग। योग कहाँ तक है? तेरहवें तक। चौदहवें में बंधक का कोई कारण नहीं रहा इसलिए उनको बंध भी नहीं है। हर में ये उन्होंने कहा इसलिए हमको रटना नहीं, हमको तो कारण हमको देखना है, तो फिर पक्का अपने को इमीडिएट उसका आंसर आ जाता है। रटने से ये कोई बातें ख्याल में रहने वाली नहीं है। तो किसको बंध ही नहीं तो स्थान काहे का होगा? इसलिए सहयोगी केवली तक संयतों में आठ ही गुणस्थान लिए, छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां और तेरहवां, आठ हो गए इसलिए आठ कहा। नौवां अयोगी को वहां नहीं लिया, संयतों के गुणस्थान नौ उसमें से आठों को लिया यहाँ पर। अभी कौन से गुणस्थान वाले को कितना बंध स्थान है वो बताएंगे। बंधक पने का अभाव ये हो गया। अभी चौथा नंबर का सूत्र नानावरणीयस्य कम्मस्य पंचपयडियो याद है कौन सी? वो तो ज्ञान के भेद बताए। देखो नानावरणीयस्य कम्मस्य पंचपयडियो आभिनिभो धीय घीय हुआ धीय नानावरणीयम सुद नानावरणीयम ओधि बराबर करना ओधि नानावरणीयम मणपज्जव नानावरणीयम केवल नानावरणीयम चेदी। ज्ञानावरणीय कर्म की पांच प्रकृतियां हैं आभिनिबोधि ज्ञानावरणीय श्रुत ज्ञानावरणीय अवधि ज्ञानावरणीय मनपर्य ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। वो वरणीय हुआ वरणीय करना, हिंदी में व का ब का वो बहुत करते हैं। शंकाकार पूछ रहे हैं ये पहले सभी बातें बताई थी ना, अभी दोबारा क्यों यह बता रहे? आभिनिबोधिक मति ज्ञान के लिए आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं और उसके आवरण वाले कर्म को आभिनिबोधिक ज्ञानावरण, उसका दूसरा नाम मति ज्ञानावरण। शंकाकार कहते पहले प्रकृति समुत्कीर्तन चूलिका में कहे जाने के कारण पुनरुक्त होने से यह सूत्र पुनः नहीं कहना चाहिए। तो वहाँ ये प्रकृतियों के नाम तो पहले बताए थे, अब यहाँ क्यों बताते थे? पर ये पांचों एक साथ बनती ये कहना है, ये स्थान है उनका, पांच प्रकृतियों का एक स्थान है, यही एक ही स्थान पहले गुणस्थान वाले से लेकर चौदवे तक बनते हैं। उसमें स्थिति अनुभाग जुदे जुदे बनने की वो बात नहीं, पर पांचों का बंद होता है, दसवें तक बंद है, बंद दसवें तक है। देखो पहले ये समाधान करते नहीं, क्योंकि सभी जीवों को धारणावरणीय कर्म के एक सूक्ष्म का अभाव है। उसमें क्या लिखा आपकी पुस्तक में? ज्ञानावरणीय लिखा क्या? धारणावर ऊपर ऊपर क्या प्राकृत में क्या लिखा है? न सवेसिम जीवाणुम सरीस, आगे क्या लिखा है पहली लाइन में? प्राकृत की पहली लाइन, प्राकृत की पहली लाइन पढ़ो। हाँ, और नीचे ज्ञानावरण कर दिया। ऊपर बराबर लिखा है ना धारणावरणीय, सबको मिलकर धारणावरणीय कह दिया ना, क्योंकि सभी जीवों को धारणावरणीय कर्म के सूक्ष्म का अभाव है। ऊपर उन्होंने धारणा रखा तो नीचे देखो देखो धारणा का अर्थ क्या है? धारणा में यानी वो स्मृति में रख जाना, वो सबके नहीं पाया जाता है। कभी कोई शिष्य भूल गए उनके लिए फिर दोबारा लिखा है। फिर से देखो, सभी जीवों को धारणावरणीय कर्म के सूक्ष्म का अभाव, यानी सभी जीवों के वो धारणा में नहीं रहते। बात ये धारणा शब्द ही ठीक है, वो ज्ञाना का आप उसको धारणा करो पेंसिल से, और पीछे पेज नंबर लिख के रखो जहां जहां आपने करेक्शन किया है, पीछे केवल वो पेज नंबर रखो, क्योंकि वो तो प्रकाश छाबड़ा ने मेरे ख्याल से ये सब छापे हैं। बहुत सारी नई गलतियां की क्योंकि उन्हें आगे की पुस्तकें भेजी थी उन्होंने, नव के आगे ट्रांसलेशन भी कितनी गलत हो गए और क्या क्या है, और जो मूल में छपाई में स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होते हैं वो भी बहुत सारे हो गए। अभी उसको कौन सुधारेगा इतना? हमने बोला हम पुराने पुस्तकों को सुधार के भेजेंगे, ये नई भूलें हम सुधारने के लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर उन्होंने पुरानी पुस्तकें भेजी और फिर पुरानी पुस्तकों पर हमने करेक्शन करके भेजे, ये बहुत लफड़ा हुआ था। हाँ? नहीं नहीं, धारणा यहाँ देखो देखो, यहाँ तो ज्ञानावरण की बात ही नहीं, सबको ज्ञानावरण कर्म के सूक्ष्म का अभाव है ऐसा नहीं कहना चाहते। यहाँ क्या लिखा देखो, अभी हम उसको ज्ञानावरण अगर लिखते हैं तो क्या अर्थ क्या होगा? सभी जीवों को ज्ञानावरण कर्म के सूक्ष्म का अभाव है, ऐसे थोड़ा होता है। ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि सभी जीवों के चीजें ख्याल में नहीं रहती, इतना ही कहना है। लगा ये लिखा है तो उसका अर्थ कुछ होता है। जैसे हमने अवग्रह यहाँ अवाय धारणा देखे है, उस संबंधी धारणावरणी के यदि सर्व जीवों, हाँ बोलो, देखो प्राकृत में पहली लाइन में क्या लिखा है? न सव्यसिम जीवाणुम सरीस धारणावरणीय कम्मखो समाभावा, उसका अर्थ ऐसा सभी जीवों को धारणावरणीय कर्म के सूक्ष्म का अभाव है। यह समान नहीं होता उसका, जो कुछ धारणा भी समान नहीं होती, किसी को थोड़ा याद रहता है, किसी को बहुत याद होता है। हिंदी में उसको धारणावरणीय लिखा है। अभी जो हिंदी जो नई पुस्तक आई है इनके पास सोलापुर से छपी हुई न्यू एडिशन, तो उसमें धारणावरणीय को ज्ञानावरणीय कर दिया है, तो वो बराबर घटित नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ तो केवल सभी जीवों को याद नहीं रहता है, बस इतना ही बताना था। ज्ञानावरणीय तो क्षोभम तो सभी संसार सभी बारहवें तक के सभी उसका क्षोभम है, उसकी बात नहीं है। ख्याल में है न, हमको मालूम नहीं इसलिए हम डायरेक्ट उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मूल में रखा है तो उसका कुछ प्रयोजन तो है। हाँ, उसमें हम डाउट करके अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो धारणावरणीय ने जो बराबर है, धारणावरणीय बराबर है, यानी यहाँ धारणावरणीय का अभाव है, इसका अर्थ क्या है? सभी को इतना धारणा में धारणा तक नहीं पहुंचा है, फिर दोबारा उसको अगर पूछेंगे तो याद नहीं आता है, ये कहना चाहते। यदि सर्व जीवों के द्वारा ग्रहण किया गया यानी जाना हुआ, अर्थात जाना गया, लिखा है ना, जाना गया, अर्थ अर्थ के बाद कॉमा लगाना, गया के बाद कॉमा नहीं चाहिए, कि सब जीवों के द्वारा ग्रहण किया गया अर्थात जाना गया अर्थ यानी पदार्थ, यानी जिस पदार्थ को जाना है उसके टाकी के उकेरे गए अक्षर के समान नहीं विनष्ट होता, यानी जिस जीव ने जो कुछ सुना है, जैसे टाकी पर वो घाव करते हैं तो वो नाश नहीं होता, ऐसे हरेक जीव की धारणा में सब कुछ आ जाए तो पुनरुक्त दोष होता है, तो हम दोबारा बताते हैं तो ये दोष हो जाता है। परंतु हमने पहले क्या अभी कल क्या खाया था वो भी याद नहीं है, वो भले वो उसकी रुचि तो याद हो जाए, पर हमने कितने नाम पढ़े थे क्या क्या वो तो सब भूल गए, और ये हमारे रोज के विषय नहीं है, तो ज्ञानावरणी के क्या भेद देखे थे भूल गए। ऐसे जीवों के लिए यहाँ बताना ये पुनरुक्त दोष नहीं है, इतना कहें। ख्याल में बात, इन्हें धारणावरणी शब्द बराबर है। हाँ, मतियान का भेद है, यानी हमने जो सुना है या पढ़ा है वो यहाँ जीव कितने जीवों को याद नहीं है, इसलिए उनके लिए फिर बताना ये पुनरुक्त दोष नहीं, बस इतना उनको अपनी बाजू सिद्ध की है कि ये सूत्र यहाँ क्यों दोबारा डाला। और मैंने आपको ये ऐसे विशिष्ट पुस्तक के पीछे नंबर लिखना, आप हम उनको बता देंगे बाद में। और जहाँ कोई हम पढ़ते हैं उससे कुछ दूसरा शब्द आता है तो हमको कभी बताना। टांकी से ही है, टांकी से उकेरे गए, टांकी समझते ना, वो तो पत्थर होते ना, उसको वो तो छीने हथौड़े से वो हम उसको उकेरते हैं। आपने देखा वो चक्की वगैरह होती है ना, वो क्या करते हैं हफ्ते हफ्ते में फिर टांकी की घाव डालते हैं, या मूर्तियां वगैरह बनाते, कैसे बनाते हैं टांकी से, वो शिलालेख बनाते हैं, अभी हजारों साल के बाद आज भी हम उसको पढ़ते हैं ना, ये मूर्तियां हमारी कितने तो चौथे काल की भी है। तो ऐसा सबका ज्ञान उतना रहता नहीं है, ये कहना चाहते। धारणा का अर्थ क्या है? जैसे टांकी से उकेरा हुआ वो रहता है बहुत लंबे काल तक, ऐसे धारणा में भी बहुत लंबे काल तक चलता रहता है, सबकी तो इतनी धारणा शक्ति नहीं होती है, उनके लिए दोबारा बताना आवश्यक समझा। किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि जल में लिखे गए अक्षर के समान, क्या है हमारी बुद्धि कैसी जल में लिखे गए अक्षर के समान ग्रहण किए गए अर्थ का कितने ही जीवों में विनाश पाया जाता है, यानी उनमें धारणा तक नहीं रहता है, पहुंचता नहीं है, रहता न संस्कार रूप से, इसलिए भ्रष्ट संस्कार वाले शिष्य के स्मरण कराने के लिए। ये भ्रष्ट संस्कार, संस्कार यानी धारणा तक पहुंचा हुआ ज्ञान संस्कार के रूप में हर प्रक्रिया में चलता है और फिर बाद में याद आता है, वैसे इसके संस्कार भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि वो तो धारणा का आवरण करने वाले कर्म का क्षोभम नहीं है उसका, यानी धारणा तक पहुंच भी गया हो तो भूल जाते हैं बाद, जल्दी उसकी स्मृति नहीं रहती अभी, उसको कहते हैं भ्रष्ट संस्कार वाले शिष्य के स्मरण कराने के लिए यह सूत्र कहना चाहिए। हाँ, आगे देखते हैं पांच नंबर का। एदासिम पंचन्नम पयडीनम एकम्मिचेव ठाणम बंध मानस्य। क्या कहते हैं, इन पांचों प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। ये कौन सा स्थान है? पांच संख्या वाला एक स्थान है। स्थान कहते हैं कितनी प्रकृतियों का बंध है, कहते पांच प्रकृतियों का। तो पांच प्रकृतियों का एक ही स्थान है। अभी किसमें किसमें बता रहे, मिथ्या दृष्टि से लेकर संयतों तक बता रहे, तो सब जगह उनका एक ही स्थान है। उसका अर्थ है सबके पांचों ही प्रकृतियां बनती है, ये उसका अर्थ है। पांच प्रकृतियों का एक ही स्थान है, ये उसका अर्थ है। ख्याल में ऐसे हम आगे आगे देखें, अंतराय का भी पांच का एक ही स्थान बताएंगे। वेदनी दो अलग 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 है, पर या तो ये बंधेगी या दो, तो उसका एक का ही स्थान है, ऐसा उसको कहेंगे। अब इसका अर्थ देखते हैं। इन पूर्व सूत्र में कही गई पांचों प्रकृतियों के बांधने वाले जीव का पांच इस संख्या से उपलक्षित, पांच को दोनों ओर इन्वर्टेड करना, एक ही ओर हो गया। पांच इस संख्या से उपलक्षित यानी पांच संख्या द्वारा बताए उसको, एक ही अवस्था विशेष में स्थान अर्थात अवस्थान होता है, यानी पांचों प्रकृतियां बनती है। कोई भी हो, मिथ्या दृष्टि हो या सम्य दृष्टि हो या संयत हो, पांच प्रकृतियों का बंध होता है उसके। शंका, सूत्र में एवकार पद किस लिए दिया है? एक ही भाव लिखा है ना ऊपर में, चेव। समाधान, ज्ञानावरणी कर्म की एक दो तीन और चार संख्या से उपलक्षित प्रकृति संबंधी अवस्था में अवस्थान का प्रतिषेध करने के लिए सूत्र में एवकार पद दिया। यहाँ ये बात कहना चाहते हैं कि भले वो मिथ्या दृष्टि बांधता हो या संयत, उसमें एक या दो ही प्रकृति बंधेगी ऐसा कहीं नहीं होता है, तीन या चार ऐसे बंधेगी ऐसा कभी नहीं, पांचों के पांचों का बंध है। ज्ञानावरणी का जो बंध है पहले से दसवें तक पांचों ही प्रकृतियों का बंध हो रहा है, ये उसका अर्थ है। इसलिए ही लगाया, पांचों ही, पांच का ही एक ही स्थान है। अर्थात सभी जीवों के दसवें गुणस्थान तक पांचों ही प्रकृतियों का बंध होता रहता है। मिथ्या दृष्टि को भी पांचों प्रकृति बंध रही है और वो दसवें गुणस्थान वाले को भी पांचों ही प्रकृति बंध रही है। हाँ, डिफरेंस होगा क्योंकि दसवें गुणस्थान वाला अंतर्मूल प्रमाण स्थिति बांधता है ज्ञानावरण की, और अनुभाग भी वो अप्रशस्त है, बहुत हीन बांधेगा। पहले गुणस्थान वाला मैक्सिमम 13-30 कोड़ा कोड़ी का बंद कर सकता है, अनुभाग भी ज्यादा बांध सकता है, ये डिफरेंस है। हम यहाँ तो प्रकृति की बात है, कितने प्रकृतियां बनती है इसी के मतलब है, उसका अनुभाग क्या है, स्थिति कितनी बनती है, उसका यहाँ प्रयोजन नहीं है, वो तो अलग से बताएंगे। तम, अभी वो बंध स्थान किसके होता है वो बताएंगे। तम मिच्छा दिष्ठिस व शासन सम्य दिष्ठिस व सम्मा, ये सम्मा के लिए स के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए क्योंकि डबल म किया है ना। सम्मा मिच्छा दिष्ठिस, जैसे 80 पेज पर लिखा है पहली लाइन में सम्मा, वैसा सम्मा होना चाहिए। उसमें क्या है, बिंदी नहीं है ना। व असंजद सम्मा दिष्ठिस व संजदा संजदस व संजदस व, वह बंध स्थान मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्य दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्य दृष्टि, संयता संयत और संयत के होता है, यानी सबके पांच वाला प्रकृति का एक बंध स्थान सबको उतना ही होता है। 82 नंबर के पृष्ठ पर आना, 82। वह पांच संख्या से उपलक्षित भावों का, यानी पांच संख्या से उसका वर्णन किया ना, पांच संख्या वाला एक बंध स्थान, उस भावों का आधारभूत बंध स्थान इन सूत्रोक्त गुणस्थान वाले बंधक जीवों के होता है, अन्य के नहीं, क्योंकि इनसे पृथकभूत गुणस्थानों का अभाव है। यहाँ संयत ऐसा कहने पर सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत गुणस्थान तक के बंधक जीवों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर के गुणस्थान वाले जीवों के ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन नहीं होता, यानी यहाँ तक होता है, उसके ऊपर नहीं होता, तो हम कहते हैं ज्ञानावरण कर्म के बंध की विच्छित्ति दसवें गुण स्थान में होती है, ये उसका अर्थ। अब दंसनावरणीय कम्मस तिन्नी ठानानी, तीन अलग अलग स्थान कहेंगे, उसकी प्रकृतियां तो नौ है, तो मिथ्या दृष्टि की तो नौ के नौ बंधेगी, जब दूसरे गुणस्थान वाले को तीन उसमें से नहीं बनती, ज्ञान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, दूसरे में विच्छुति होती, तीसरे से नहीं बनती, दूसरे में बनती है, तो कहते कि उसमें वो छह वाला स्थान होगा, तीन नहीं बंधेगी, पहले दो में नौ बंधेगी, बराबर है, तो उसके तीन स्थान बताते। तो दंसनावरणीय से कम्मस तिन्नी ठाणानी नवन्नम छन्नम चतुर्णम ठाणम इदि, यानी नौ प्रकृतियों का एक स्थान होगा, छह का एक होगा और चार का एक होगा। तो दर्शनावरणीय कर्म के तीन बंध स्थान है, नौ प्रकृति संबंधी, छह प्रकृति संबंधी और चार प्रकृति संबंधी बंध स्थान। यह संग्रह नयाशित सूत्र है, सु शब्द डाल, सु अक्षर डालो, त्र लिखा है ना, सूत्र है ब्रह्मा, डाला है क्या, सात के नीचे का पहले जाए। यह संग्रह नयाश्रित सूत्र है, क्योंकि वह अपने अंतर्गत सर्व विशेषों का आधारभूत है, इसका अर्थ कहते हैं। संग्रह नयाश्रित यानी उसने वो सभी नौ के नौ प्रकृति उसमें इंक्लूड कर दी, इस तरह से दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृति संबंधी एक स्थान है, स्त्यान वृद्धि आदि तीन प्रकृतियों को छोड़कर, यानी स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा और प्रश्ला प्रश्ला तीन को छोड़कर, शेष छह प्रकृति संबंधी दूसरा स्थान है और चक्षु दर्शनावरण आदि चार प्रकृति संबंधी तीसरा स्थान है, यानी चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण अवधि दर्शनावरण केवल दर्शनावरण, यानी निद्रा संबंधी सभी का बंध विच्छित्ति हो गई। देखो पहला स्थान है नौ प्रकृतियों का बंध स्थान, वो किसके बंधेगा तो अभी बताएंगे, पहले और दूसरे गुण स्थान वालों को बंधेगी। फिर कौन सा है, छह प्रकृति का, वो छह का कहां तक, जब तक वो निद्रा प्रचला का बंध मिट नहीं जाता तब तक वो आठवें के पहले भाग में बंध विच्छित होगी, यानी आठवें के पहले भाग तक उसका बंध होगा, यानी वहां तक तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा और आठवें का पहला भाग, वहां तक छह छह प्रकृतियां बंधेगी, हर समय बंधेगी, बाद में निद्रा प्रचला नहीं बंधेगी, तो चार प्रकृतियों का बंध होगा, कहां तक, दसवें तक हो, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय वो सब दसवें तक बनती है, गोत्र भी बारहवें में ग्यारहवें बारहवें में केवल एक साता विधने का बंध है, बाकी सब प्रकृतियां नीचे तक बनती है। तो हमने तीसरा स्थान देखा। शंका, प्रकृतियों की अपेक्षा भेद का अभाव होने से स्थान का भेद करना युक्तिसंगत नहीं है, यानी क्या कहते हैं, प्रकृतियों के नाम तो वही के वही है, उसमें से कुछ प्रकृतियां बंधने से रुकी, तो कहते इसलिए वो स्थान के भेद बताना अच्छा नहीं है, बराबर नहीं है, उन्होंने संख्या की अपेक्षा भेद बताए हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि नौ छह और चार संख्या से विशिष्ट प्रकृतियों के समूह के एकता का विरोध है, जब नौ बनते तो कौन सी नौ है वो तो उसका नक्की है, छह में कौन सी नहीं बनती कौन सी बनती वो उसका ग्रुप निश्चित है, चार कहने से वो भी नहीं बनती निद्रा प्रश्ला वो भी निश्चित है, इसलिए ये तो भेद है ही, नौ का बंध स्थान है नौ बंधना, छह बंधना, चार बंधना, ये जुदी जुदी बात है। दूसरी बात यह है कि भिन्न गुण स्थानों के आधार से ये स्थान है, एक ही गुण स्थान में जुदे जुदे नहीं बन रहे थे, ये भिन्न भिन्न गुण, देखो यहाँ पर जो ये बात बताई ना, अलग अलग गुण स्थानों में इसकी जो अलग अलग प्रकृतियां बनती है, इसलिए गुण स्थानों का भी आधार जुदा जुदा है, इसलिए इनमें अनेकता या विभिन्नता है, अतएव स्थान का भेद युक्ति संगत है, यानी नौ का छह का और चार का ये जो भेद बताए वो बराबर है, अब पर्यायार्थिक नए वाले जीवों के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। पर्यायार्थिक ने उन्होंने 9, 6 और 4 बता दिए, अभी उसके तो खोलकर बताएंगे कौन सी प्रकृतियां हैं। तत्थ इमम नवन्नम ठाणम, निद्दा निद्दा पहला पहला थीन गिद्धि निद्दाय पहलाय चक्षु दंशनावरणीयम अचक्षु दंशनावरणीयम ओहि दंशनावरणीयम केवल दंशनावरणीयम चेदि। ज्ञान दर्शनावरणीय कर्म के उक्त 3 बंध स्थानों में निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्थान वृद्धि निद्रा और प्रचला तथा चक्षु दर्शनावरणीय अचक्षु दर्शनावरणीय अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शनावरणीय, यह 9 प्रकृतिक प्रथम स्थान बंध स्थान है। प्रकृतिक का अर्थ है प्रकृति वाला, 9 प्रकृति वाला पहला बंध स्थान। शंका, दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों का नाम निर्देश और संख्या। प्रकृति समुत्कीर्तना नाम की प्रथम चुलिका में यह सब निरूपण किया जा चुका है, फिर यहाँ उसे किस लिए कहा जा रहा है? अभी बताया था ना वो धारणा धारणावरणीय का क्षोभम, उसका अभाव होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं क्योंकि मंद बुद्धि वाले शिष्यों को संभालने के लिए वह सब यहाँ पर पुनः निरूपण किया जा रहा है। क्योंकि देखो ये विषय नए है, एक बार सुनने से ख्याल में भी नहीं रहते, इसलिए बार बार उसको दोहराते हैं, तो ये बिल्कुल पक्का यह उसको स्मरण हो जाता है फिर दोबारा कहने से। अथवा ये निद्रा निद्रा आदि संज्ञाएं प्रकृतियों की नहीं है किंतु प्रकृति बंध के कारणभूत स्थान की शक्तियों की संज्ञा है। यानी पहले और 2 गुण स्थान में बनती है, तो वहां पर वो स्थान बताने से वहां के जीवों में इसको बांधने रूप जो परिणाम है उसकी बात हो रही है, इसलिए उसके पुनः कथन करने पर भी कोई पुनरुक्त दोष नहीं आता है। एदासिम नवन्नम पैडीनम एकम चेवट ठाणम बंध मानस, इन 9 प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। इन पूर्व सूत्रोक्त 9 प्रकृतियों का एक ही भाव में स्थान या अवस्थान होता है, अथवा बंध करने वाले जीव के इन 9 प्रकृतियों के बंध का एक ही स्थान या भाव है। यानी इन 9 प्रकृतियों के बंध बांधने का जो भाव है वो एक है, क्योंकि वो 9 के 9 बांध रहा। आगे उसका उत्तर, वह कौन सा, वह एक भाव कौन सा है, शंकाकार पूछता है। समाधान, वह एक भाव दर्शनावरणीय कर्मों की कर्म की 9 प्रकृतियों के बंध का कारणभूत सम्यक्त्व का अभाव है। ख्याल में वो सम्यक्त्व होने पर उसमें से 3 जो निद्रा है पहले वाली 3 उसका बंध रुक जाता है। रुकेंगे अभी यहाँ पर, हम पेज नंबर 84 पर यहाँ कल पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूर्य